तो शरीर जीर्ण होता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता है। और निद्रा, निद्रा शरीर को आती है, बुद्धि को आती है, आत्मा को नहीं। ऐसा नहीं है कि काम करते करते आत्मा कभी थक जाएगा, सो जाएगा। आत्मा नित्य जगा रहता है, कभी नहीं सोता है। हम लोगों को जो शरीर मिला है इसमें निद्रा एक लगता है जैसे आवश्यक आइटम भगवान ने जोड़ दिया है, रोज खाओ सो, ये सब आत्मा में नहीं है। हमारे स्वरूप में यह चीज नहीं है, सोना और खाना, प्यास लगना, रोग होना, बुढ़ापा होना। आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा को जब सुलाया जाएगा तब जाकर के कुछ स्वस्थ होगा। हमारा शरीर तो ऐसा है, और मन भी, दोनों मन और शरीर, मतलब बुद्धि और शरीर, कि इनको अगर आराम न दीजिए तो इनकी दशा बिगड़ जाएगी। 8-10 दिन किसी को जगा दीजिए तो वो पागल हो जाएगा, उसके लिए आराम चाहिए। लेकिन आत्मा के लिए आराम की कोई आवश्यकता नहीं, वह नहीं सोता है, निद्रा उसके लिए आवश्यक। रति है, रति का अर्थ है कि किसी विषय को भोग करके और सुख का अनुभव करना, इसको रति कहते हैं। कुछ मान लीजिए एक गिलास रस पिया तो मजा आ गया, ये मजा आत्मा को नहीं आया। आत्मा प्राकृत रस से मजा नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कोई देवता हो और कोई कहे कि वो इस पृथ्वी पर आकर के और सुअर जैसा गड्ढा में लूट करके और कहे कि मजा आया गया, अरे उसको क्या है मजा। आत्मा इस प्राकृत वस्तु खा करके, छू करके, देख करके उसको मजा नहीं आएगा। उसका मजा है महामन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक वस्तु से ही उस सुख का अनुभव करेगा। लेकिन बीच में जैसा जैसे लग रहा है कि ये चीज मेरा तो सुख का अनुभव करने लगा, जैसे मान लीजिए कोई थका हो, धूप में से आया हो और एसी चालू किया जाए, हवा शरीर में लगती है तो इसके बाद आदमी का आत्मा फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गया। आत्मा इस तरह से कभी रिलैक्स नहीं होता, वो ऑलरेडी रिलैक्स है, आनंदमय है, उस स्वयं आनंद से बना हुआ है। ये आनंद घन परमात्मा का, भगवान का अंश है, इसलिए स्वयं ही आनंदमय है। बाहरी आनंद इसमें डाला नहीं जा सकता है, पर भी प्राकृत वो भी जड़ पदार्थ, वो आनंद नहीं है आत्मा। आत्मा का आनंद स्प्रिंट है। तो भगवान की जो भक्ति है, उनका नाम रूप गुण लीला ये सब चीज शक्ति है, ये सब देहलाग्री शक्ति है। इसीलिए आत्मा का वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति। तो आत्मा में रति नहीं है राजा जी, ये देह और मन में है, और मन में क्रोध, मन में क्रोध। जैसे आप तमतमा गए हैं, आप क्रोध में हो गए हैं, तो वास्तव में आप क्रोधित नहीं हुए, आपका मन क्रोधित हो गया है। तो क्रोध भी आत्मा नहीं कर सकता है। क्यों? जैसे क्रोध क्यों होता है? क्रोध इसलिए होता है कि हमको ये वस्तु नहीं मिली, हमारी इच्छा से नहीं हुआ। तो प्राकृत एडजस्टमेंट की इच्छा आत्मा को हो ही नहीं सकती, इसलिए उसमें क्रोध आ नहीं सकता। आत्मा कभी क्रोध नहीं करता, न आत्मा में कभी काम विकार आ सकता है, न कभी लोभ आ सकता है, न निद्रा रति सब। और अहम मदह और सांसारिक पोजीशन के चलते, सांसारिक धन के चलते, रूप के चलते, विद्या के चलते आत्मा में कभी मद नहीं हो सकता है। अहम मदहकार से कि शरीर में मैं बुद्धि करके एक मद होता है, गर्व होता है, तो आत्मा को नहीं हो सकता। तो आत्मा कभी ऐसा अनुभव नहीं करेगा कि हाँ मैं बड़ा पोजीशन वाला हो गया। दिव्य आत्मा इन प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर के कैसे अहंकार कर सकता है, कैसे गर्व कर सकता है? जैसे मान लीजिए कोई राजा हो, भारतवर्ष का राजा बन जाए, और राजा क्या कभी कूड़ा करकट के पास, गार्बेज के पास आकर के कहेगा कि पूरा मेरा अधिकार हो गया, पूरा गार्बेज पर मेरा अधिकार हो गया, ऐसे गर्व उसे कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा व्यक्ति है, सारा भारत उसके अधीन। इस तरह आत्मा इतना सुपीरियर है इस माया जगत से, उस माइक वस्तुओं के कारण कभी गर्व नहीं हो सकता। तो गर्व होना, सुख का अनुभव होना, क्रोध होना, भय, प्यास, भूख और श्रम, थकावट, स्थूलता या कृशता, हे राजन, ये सब देह के होते हैं, मन के होते हैं, आत्मा के नहीं। देहे न जात सही में संत सूचक, सूचक अर्थ शोक। हम लोग इस संसार में कुछ न कुछ शोक करते रहते हैं, ये स्वभाव हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यदि दो चार बच्चे हो गए तो हम लोग सोचते रहते हैं कि इसका आगे क्या होगा, बिना मतलब के सोचते रहते, शोक करते रहते, कुछ न कुछ शोक करना, उसने हमको ऐसा कह दिया, वहां गया तो ये चीज नहीं मिला, कुछ न कुछ मन अभाव की सृष्टि करके सोचता रहता। लेकिन आत्मा का क्या बिगड़ सकता है इन वस्तुओं के नाम मिलने पर, और अपमान से आत्मा में शोक नहीं है, वह आनंदमय है। देहे न जाता सही में शांति, जो देह में उत्पन्न हुआ है, देह को मैं मानता है, उसी में ये सब होते हैं, हम में नहीं। न मैं शांति, हम में ये सब नहीं है, न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है, न मुझे शोक है, न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, न मुझ में मोटापन है, न कृशता है, न मुझ में आधी है, न व्याधि है, कुछ नहीं। जो देह को मैं मान चुका है, उसमें ये सब होते हैं, देह के धर्मों को, मन के धर्मों को अपने में आरोपित करता है। लेकिन हे राजन, ये सब मुझ में नहीं, मैं देह में नहीं, मैं देह से बिल्कुल भिन्न। अच्छा, राजा रघुवर ने एक बात कही थी कि क्या तुम जीते जी मर गए हो, क्या सांस लेते हुए मर गए हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तो उसका उत्तर देते हैं, जीवन मृतत्व में नियमे न राजन आद्यंतवत जब विकृतस्य दृष्टम। हे राजन, हे महाराज जी, आपको आपका अभिमान नहीं जा रहा है कि मैं राजा हूं, इसलिए लीजिए मैं भी आपको राजा कह देता हूं। हे राजन, जो जीवन मृतत्व है, जीवित अवस्था में मरा हुआ, ये सब जगह लागू है, ये नियम से ही है, केवल मुझमें ही ऐसी बात है या नहीं है, सबके साथ लगा हुआ है कि जीवित अवस्था में ही सभी मरेंगे। यह दृष्टम और प्रत्यक्ष विषय है, जीवन मृतत्व नियमे न राजन, क्योंकि जितने भी विकृत होने वाले पदार्थ हैं, परिवर्तनशील क्षणभंगुर पदार्थ हैं संसार में, देखा जाता है आद्यंतवत, वो आदि और अंत वाले हैं, एक दिन उनका प्रारंभ होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। और इस अवस्था में भी शरीर जीवित माना जाता है, लेकिन वास्तव में पहले से ही मरा हुआ है, जीवित कोई और वस्तु है जो इसमें चेतना दे रही है, इसकी अपनी चेतना नहीं है। तो सबके लिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक आदमी जीवित ही मरा हुआ है, केवल मेरे साथ लागू नहीं, आप स्वयं ही जीवित अवस्था में मरे हुए, शरीर मरा हुआ, एक दिन शरीर था नहीं, मां के घर में मिला और श्मशान में समाप्त हो जाए। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु चल रही है, चल रही है, लेकिन जन्म ली है और एक दिन उसको समाप्त होना, ये तो सबके साथ लगा हुआ है, सभी जीवित अवस्था में मरे हुए। और आपने एक बात कही, उसने कहा था राजा रघुवर ने कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम स्वामी की अवहेलना कर रहे हो, तुम पहचानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे दास हो। पर इस पर कहते हैं, स्वस्वाम में भावो ध्रुवी तेजत्र सभी चेत विधिकृत योग हे युद्ध, युद्ध का अर्थ है हे स्तुति के लायक, यहां पर अर्थ है कि हे प्रशंसा सुनने के इच्छुक, आपकी इच्छा हो रही है कि हमारी कोई प्रशंसा करे तो मैं भी कह रहा हूँ आप दिव्य हैं, अथवा इस समय राजा के पद पर आप आसीन हैं, इसलिए भाई प्रशंसा के पात्र हैं, इस समय आप राज पद पर हैं। तो हे राजा, जत्र स्व स्वामी भाव ध्रुव, जहां पर स्वामी और दास का पोजीशन नित्य हो, कभी बदलने वाला न हो, अनादि काल से हो और आगे भी अनंत काल तक रहे, वहीं पर विधिकृत योग लागू होता है। विधिकृत योग का अर्थ है कि एक व्यक्ति आर्डर देता है और दूसरा व्यक्ति उसको पालन करता है। विधि और कृत इसको कहते हैं। एक कानून बनाएगा, कोई रास्ता बनाएगा, संविधान बनाएगा और दूसरा उस पर चलेगा, तो चलने को कृत्य कहते हैं, वो करेगा, करना चाहिए, और विधि मतलब कानून। लेकिन सदा यह व्यवहार वहीं चलेगा जहां स्वामी और सेवक का संबंध नित्य हो। लेकिन इस संसार में देखा जाता है कि स्वामी और सेवक का स्वस्वामी भाव अध्रुव है, अनित्य है। यदि मान लीजिए आपका राज्य भ्रष्ट हो जाता है, आप राज्य चिंत हो जाते हैं, और मैं यदि राजा हो जाऊंगा तो ये सारी स्थिति विपरीत हो जाएगी, और तब मैं कहूंगा कि किम इदम अरे, कैसे चल रहे हैं। तो मैं अगर पालकी में चढ़ जाऊं, मान लीजिए मैं राजा हो जाऊं और आप यदि दास हो जाते हैं, तब तो कानून ठीक उल्टा हो जाएगा, तब मैं आर्डर दूंगा आपको, होगा नहीं, तो होता रहता है ना। इस संसार में कौन किसका मालिक है, कौन किसका सेवक है। स्व स्वामी भाव, स्व का अर्थ है नौकर, दास, और स्वामी मतलब स्वामीपना का भाव। यह इस संसार में अनित्य है। देखा जाता है कि आज जो व्यक्ति नौकर है कल राजा हो जाता है, और जो राजा था उसकी दासता करता है। हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चैतामृत में कि सुबुद्धि राय बंगाल के राजा थे, और एक बार उनके यहां नवाब हुसैन शाह जब बच्चा था वो पढ़ रहा था, और पढ़ते समय उसको उन्होंने मार दिया था घोड़े के चाबुक से, तो उसके पीठ पर दाग उखड़ गए। और वही हुसैन शाह जो बंगाल का नवाब बना, राजा बना, तो उसकी स्त्री बेगम वो देखी उसके पीठ पर दाग और पूछी कि ये दाग कहां से उखड़ा है आपकी पीठ पर। तो उसने कहा कि सुबुद्धि राय हमारे गुरु के समान है, वे पढ़ाते समय हमको मारे थे। तो उसकी पत्नी बेगम वो मान कर गई, रुठ गई, कहे तो उसको प्राण दंड दीजिए जो उसको आपको बचपन में मारा, उसको प्राण दंड दीजिए, नहीं तो मैं जीऊंगी नहीं। तो लगा कहने कि अरे वो पवित्र ब्राह्मण है, ऐसा मत करो, हमारे गुरु हैं। तो फिर भी वो नहीं माने, कहे कि मैं प्राणांत करूंगी, हत्या करूंगी अपनी यदि आप उसको नहीं मारते। वो मनाने लगा नवाब हुसैन शाह कि नहीं ऐसा मत करो। तब उसने कहा कि कम से कम उसकी जात ले लो, मुझे मुसलमान बना दो। तब इतना पर वो राजी हो गया, तो अपने हुक्का का जूठा पानी उनको जबरदस्ती पिला दिया और मान लिए कि मैं मुसलमान हो गया। ऐसे हिंदू लोग बेवकूफ होते, तो जूठा पानी पिलाने से कोई मुसलमान हो जाएगा, ये सोचने की जरूरत है। तो और गए जब मुक्ति मंडल के पंडितों से पूछे जगह पूरे में, तो वे लोग बताया कि आपको जलता हुआ घी पी करके मर जाना चाहिए, अब दूसरे जन्म में आप ब्राह्मण होंगे, हिंदू होंगे, अब आप इस समय से नहीं होते। और इतना जन्म त्याग देना आसान नहीं था, तो बनारस गए, बनारस का जो पंडित बहुत प्रसिद्ध है, तो वे लोग कहे कि आप तो सामान में धीरे धीरे जल कर मर जाइए, तब शुद्ध होंगे। एक से कठिन, लेकिन वहीं पर किसी पंडित ने कह दिया कि आप मंदिर चले जाइए, इस समय विश्व के सबसे बड़े पंडित हनुमान पंडित रहते, वे जो कुछ कहेंगे वो प्रमाण होगा। तो समुद्र राय गए वहां, लेकिन उनसे भेंट नहीं हुई चैतन्य महाप्रभु से।
तो फिर बनारस में भेंट। बनारस में से बुद्धिराय ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से तो ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी जात कहीं नहीं गई है, आप ठीक है, आप हिंदू हैं, और यदि आप मानते हैं कि कुछ पाप हो गया है तो केवल महामंत्र जपिए और कुछ खजूर भी गई है, और वृंदावन में जाइए, वहां पर वैष्णवों को कुछ चावल खरीद करके खिलाइएगा। हमारे बंगाली वैष्णव चावल खाते हैं, उनको सरसों का तेल लगाने के लिए और चावल खाने के लिए कुछ दे जाएंगे। उन गाय को सूखे लकड़ियां बेच बेच कर लखनऊ जाए और बंगाली वैष्णवों को बह दे। देखिए एकदम जिसका हाउसिंग लगा था, चाबुक लगा था, वो एकदम गंगाई का अनुवाद हो गया, बदसा हो गया। तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। बहुत ही निकट का उदाहरण देने पर और क्लियर हो जाएगा। बहुत पहले जो लोग महाराज कहे जाते थे तो उनको बहुत कृपा करके कुछ लोग प्रभु कहकर के संतोष कर देते हैं। नई व्यक्ति यदि आता है तो उसको मेला वाला हुआ भक्त हुक्म देता है, वहां बैठो, ये करो ये करो। बड़ा बड़ा व्यक्ति भी इस तरह से क्षण भर में देखा जाता है। संकेत काफी है, सभी समझ सकते हैं। इस संसार में स्वामी और सेवक की जो स्थिति है टेम्पररी है, संभवी है, इसलिए कानून कायदा संविधान भी टेम्पररी है। आप क्यों ऐसे मानते हैं कि मैं राजा हूं और मेरा सेवक? कब से आप हमारे राजा हैं? कितना दिन से आप राजा हैं? मां के गर्भ में जब व्यक्ति जन्म लेता है उसमें क्या राजा रहता है, और कुछ ही दिन के बाद नरघट पर जाया गया, बुढ़ापा आएगा, तब राजा पना कहां रहेगा? तो शरीर को जो मां मानते हैं उस तरह से आंदोलित होते रहते हैं, उनका मन आंदोलित होता है। आज राजा मानते हैं, कल अपने को कंगाल मानेंगे, कल ये मानेंगे, गोरा मानेंगे, काला मानेंगे, ये वो ऐसे ऐसे चलता रहे। शरीर को मां मानते, इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो स्वामी है, बाकी सब दास, इनके कहने दास। जहां पर स्वामी और सेवक का भाव लिप्त रहे वहीं पर ये ऑबिडियंस, मैं आज्ञा मानना और आज्ञा देना मुझसे रहेगा। तो वास्तविक स्वामी भगवान श्रीहरि है, कृष्ण है, और बाकी सब सेवक है। इसलिए सब अवस्था में, सब काल में, सभी देश में एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन करना है, बस वही स्वामी है। और कोई आज्ञा दे नहीं सकता है, क्योंकि आज आज्ञा दे रहा है, कल हो सकता है उसी आज्ञा का पालन करने वाला वो है, आज्ञा देने वाला दूसरा हो जाएगा, है ना? ये तो देश के शासन में या मठ मंदिर में भी अध्यक्ष बदलते रहते, टेम्पररी। कुछ तो राजा ऐसे होते हैं जीवन भर शासन करते हैं, राजते हैं। राज के युग में तो 5 वर्ष निभा देते, वो कहते 5 साल सरकार ले गए थे काम करके, 5 साल चला दिए, 5 साल चला दिया तो बहुत प्रशंसा होती, और 5 साल के बाद वो कहते हैं इसको जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में करो, जेल में करो, पता नहीं कब जन्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये स्वामी और सेवक का भाव क्या रहा? कौन यहां प्राइम मिनिस्टर है, कौन राष्ट्रपति है, और क्या है? तो कुछ दिन पहले अंग्रेज जो लोग उस देश को अपना मानते थे कि हवाना राज्य, लेकिन उन्हें उनसे भगा दिए, महात्मा गांधी ने भगा दी। एक दिन मानते थे कि ये हमारा देश, हमारा देश, और कोई भी नियम लागू करते थे तो सुपरफिशियली वो ये दिखाते थे, कहते थे कि भारत बहुत गरीब देश है और हम इसको धन्य बनाना चाहते हैं, जो बहुत अशिक्षित देश है हम शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, और असभ्य विदेश है हम उसको सभ्य बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ भी आता नहीं है, इसमें कुछ भी ना बनाए, सब कुछ इंग्लैंड से आएगा, फर्स्ट क्लास की चीज आएगी, ठीक से आएगी, और भीतरी आशा था कि हम कुछ भी ना बनाएं, गरीब हो जाए, जिससे सदा के लिए हम इनको अपने अधीन रखें बस। लेकिन बाहर रूप से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बात कहते थे तो बहुत लोग उनके घपले में आ गए, तो बहुत काम तक वे करते रहे शासन, लेकिन बाद में भी चले गए, आज उनका कुछ भी नहीं। ये स्वामी और सेवक का भाव अनित्य है, तो उनके द्वारा बनाया हुआ नियम भी अनित्य हो गए, विधिकृत जो उसी समय उनके जाते हुए भी चले गए। हमारा संविधान बना, दूसरा संविधान बना, और यहां का बच्चा राजा होता है तो वही टेम्पररी राजा होता है। अभी हुए बच्चे तो केवल 15-20 दिन के लिए राजा हुए थे ना। मैं उसमें जा रहा था विदेश, तो वो लोग पंद्रह दिन दिखा रहे, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए क्षण भंग हो। इस तरह अपने को कभी नहीं मानना चाहिए शरीर के अनुसार कि मैं यह हूं, वह हूं, ये हूं, वो हूं, और इसकी मजाल मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। अरे बाप तू बाप, आप कितना दिन आज्ञा देने वाले रहेंगे। इस तरह से आदमी जलता रहता है इस अज्ञान। तो स्वस्वामी भावो भ्रे जब तक तभी चेते विधिकृत जाऊंगा। स्वामी और सेवक का भाव जहां ध्रुव है, नित्य है, वहीं पर आज्ञा देना और आज्ञा पालन करना चलता है। अब जहां स्वामी सेवक भाव टेम्परेरी है, वहां क्या कोई आज्ञा देगा और क्या कोई आज्ञा पालन करेगा। आज आज्ञा दे रहे हो कि ठीक से पाल पाल के धो और अभी 2 मिनट में मेरे चरण में गिरोगे, भीतरी आशय भी था। स्वामी ठीक से पाल की धोए क्या हो गया। एक बार इस मंदिर में देखा था 1989 में मैं यहां आया था, 80 से 1 साल पहले, तो देवकी नंदन इस मंदिर में मेरे साथ आए थे। उसहर श्रद्धा होने से आरती उठा करके सबसे पहले मेरे पास लाए, तो मंगला आरती चल रही थी, वो दो दिनों में आरती उठाए और मेरे पास सीधे लाए। महाबुद्धिदास नाम का लड़का भक्त था, पंपा जी का शेष, वो टेम्पल कमांडर था, उस वाइस प्रेसिडेंट है टेम्पल कमांडर। तो आरती दिखाने के बाद देवकी नंदन का कान पकड़ा और भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या और भी सन्यासी हैं और आई हैं, ऐसा क्यों किया। अब तो वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, फिर मेरे पास आकर कहने लगा ऐसा ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो मैं उसको समझाया कि ये बच्चा है, नहीं जानता है, एटिकेट कहते हैं, नियम कानून नहीं जानता, अभी तो 2-4 दिन आए हुए हुआ। लेकिन मैं देखा कि थोड़े से हेर फेर से इतना रिएक्शन क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आरती भोज से कोई लड़का किसी इन्फेरियर भक्त को ही दिखा दिया तो क्या वो झूठा हो जाएगा। कोई ये बहुत गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आदमी इतना इन सब कृत्यों में बंध जाता है कि अगर क्रम से आरती हमारे पास नहीं आए तो कुछ सोचेंगे, केवल आरती आंदोलन कर देते हैं हृदय को। इसमें क्रम का निर्वाह क्यों नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन आदमी का चित्त इस तरह से छोटी छोटी बात के लिए सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। इतना ज्यादा जब चित्त प्रभावित होगा छोटे से पुरुष से, तो आदमी क्या कृष्ण मनस्तु रख पाएगा। वो तो ऐसे भी देखते हैं कभी कभी गुरु या बड़े लोग आते हैं और सब लोग आरती ले चुकते हैं, बाद में आते हैं तो आरती लेते हैं, है ना। उसमें तो ये विचार नहीं करते हैं, ये तो झूठा है। मैं नहीं कहता हूं कि क्रम या शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कभी अगर व्यतिवेक हो गया तो उसका ही कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।
ठीक कैसे चल रहा है देरी क्यों होता है पहले से हम मन में मान रही है कि मैं बड़ा हूं मेरे पास होना ही चाहिए। रामायण कथा है कि एक बार प्रणाम करने में गलती हो गई भगवान राम से, किसको पहले करना चाहिए किसको नहीं, इसी पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। अयोध्या ऐसी घटना घटी, बाद में उनको समझाया वो हम भले गुरु वशिष्ठ को करें कि दुर्वासा जी को करें तो भगवान राम नियम से गुरु महाराज को पहले किए वशिष्ठ जी को चौरण को दुर्वासा बाद में उनको समझाया। तो इस तरह से यह अहंकार यह अहम मति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य देह को या मैं मन को मैं मान लेता है, अन्यथा ये सब संसार के व्यवहार चलेंगे और मन प्रभावित नहीं होगा। उसको तो भगवान कृष्ण के चेहरे पर देखने से फुर्सत नहीं होगी कि कब क्या हो रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है। मेरा कहने का आशय है कि जब इतनी छोटे छोटे बातों पर मन प्रभावित होगा तो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या होगा। जो आगे हमको भोजन देना है आपको नहीं दिया, आगे पीछे जो वर्तमान में जो क्रोधित हो जाए, किसी दिन नहीं देगा तो हमारा तो हार्ट अटैक कर जाएगा। लता नहीं दिया, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, विचार करके चलना है इस संसार में। जब भरत जी को जब भरत जी शिक्षा दे रहे राजा राहुल गढ़ के थोड़े दिन के लिए राजा हो गए तो सोचते हो राजा हो राजा में राजा तुम नहीं हो, आज राजा हो कल नहीं रहोगे, आत्मा कंगाल के देह में जाएगा वृक्ष के देह में जाएगा कई जगह जाता रहता है। और विशेष बुद्धि विवरम मनाच पश्चिम जन्म व्यवहार कर ले, और जो विशेष बुद्धि है विशेष मतलब राजा और भक्त का जो व्यवहार है उसको विशेष कहते, निर्विशेष का मतलब ये सब व्यवहार नहीं, और विशेष का मतलब कि मैं राजा हूं तुम मन को, ये जो व्यवहार है ये जो विचार है बुद्धि है इसमें व्यवहार के अलावा कोई भी स्थान नहीं देख रहा हूं, केवल व्यवहार के लिए है सत्य नहीं है। व्यवहार तो अन्य मना विवरम हुआ पश्चिम विवरम जगह, थोड़ी भी जगह मैं नहीं देखता हूं सेवा पर स्वामी के व्यवहार विचार के लिए बुद्धि के लिए, जो व्यवहार में माना जाता है। इसमें मान लीजिए आप ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामा में कोई राजा बन गया है और कोई नौकर बन गया है, कोई पिता बना है कोई पुत्र बना है, तो स्टेज के अलावा उसका कोई महत्व नहीं है, न उधर कोई संबंध रहता है। ऐसा नहीं कह सकते, मान लीजिए ड्रामा में आपका कोई बेटा बना हुआ है तो स्टेज से नेपथ्य में जाते हैं कहीं आप तो तुम मेरा बेटा हो गया तो तुमको बेटा रहना पड़ेगा मैं तुम्हारा बाप, तो व्यवहार था केवल स्टेज पर और व्यवहार सत्य नहीं है, पर्दा के पीछे परमार्थ कुछ और है। और हो सकता है कि वो आपस में भाई भाई लगते होंगे या जो नौकर बना होगा वही नेपथ्य में मालिक होगा, कुछ भी ठीक नहीं रहता। तो ये व्यवहार के अलावा विशेष का कोई स्थान नहीं है, कोई ईश्वर कौन स्वरस्तत्र किमी से कव्यम, कौन यहां स्वामी है कौन ईश्वर है और किस पर शासन किया जाए, कौन वस्तु उसके अधिकार में बताइए, पूछ रहे हैं कौन है ईश्वर है। ईश्वर हम तब मानेंगे जब सदा से ईश्वर हो और सबका ईश्वर हो, है ना, जो सबका मालिक हो और सब समय हो तब उसको ईश्वर कहा जाए। तो कोई एक कारखाना का मालिक है और गली में निकलते हैं उसको कोई नहीं जानता है, कोई एक मंदिर का मालिक है और बाहर रोड पर कोई जानता भी नहीं है कि कौन आदमी है, आज मालिक है कल नहीं रहेगा, तो ये तो मालिक पना हुआ नहीं। ईश्वर वो है जिसकी ईश्वरता किसी भी देश में और किसी भी काल में बाधित न हो, एकमात्र कृष्ण मालिक है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब धृत जारे जैसे मैं चाहे ऐसे कैसे कर, स्वामी वो है जो सदा स्वामी हो सभी काल में, वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी, और वह 1901 में भी था, 2 में भी था, 92 में भी था, 3 में भी रहेगा, 4 में भी रहेगा, आगे आने वाली शताब्दियों में भी वो मालिक बना रहेगा, तब कहेंगे हाँ ये मालिक। 2 दिन के लिए मालिक होता है तो टेम्पररी है, आज मालिक नहीं रहेगा कल नौकर हो जाएगा। तो कौन है? ईश्वर है। और कौन सी वस्तु उसके अधिकार में है? मरेगा तो लेकर के जाएगा, या जीवित ही क्या वो कंट्रोल कर रहा है? ईश्वर कहते हैं कंट्रोलर को, क्या कंट्रोल कर रहा है? लेकिन तथा तो राजन कर्मान किंत, फिर भी यदि आपकी यही भावना है कि आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, तो ठीक है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। सबके बाद अगर आपकी यही भावना है कि आप राजा है तो हुकुम हो, हुकुम दीजिए। अब क्या किया जाएगा भाई? आपको प्रसन्न करना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि कोई राजा नहीं है, कोई सेवक नहीं है, लेकिन इस पर भी आपका यदि अध्ययन बना ही हुआ है कि आप राजा हैं, तो बताइए करवा मुकिन हम आपकी क्या सेवा।